नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। विश्वभर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से समारोह का नेतृत्व कर रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दो दिवसीय भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा के संबंध में सीबीआई ने मामला दर्ज किया। सरकार आज वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी का 10वां दौर शुरू करेगी। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज शाम समापन। और T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने सुपर 8 में बारबाडोस में अफगानिस्तान को 47 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। देश और विदेशों में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कहा कि योग की यात्रा अनवरत जारी है और दुनिया के कई देशों में योग दैनिक जीवन का अंग बन गया है। विश्व के कई बड़े संस्थानों में योग पर शोध हो रहे हैं। दुनिया योग इकोनॉमी को विशेष अवसर के रूप में देख रही है। आज देश और दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योग से मिली शक्ति को हम यहां महसूस कर रहे हैं। योग पर्यटन का ट्रेंड बदला है। योग से उत्पादकता और सहन शक्ति का विस्तार होता है। विदेशों में दूतावास और भारतीय मिशन भी योग के व्यापक प्रभाव को दर्शाते हुए समारोह में शामिल हो रहे हैं। इस वर्ष का विषय है स्वयं और समाज के लिए योग, जो व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक सद्भाव दोनों को बढ़ावा देने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य योगाभ्यास के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के संदेश के लिए हजारों प्रतिभागियों को एक साथ लाना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर भी कहा कि वे जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में योग का प्रसार करें। गुजरात में विश्व योग दिवस समारोह आज राज्य के 312 प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
गुजरात में विश्व योग दिवस मनाने के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास नड़ाबेट गांव में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, युवा खेल राज्य मंत्री हर्ष संघवी भाग ले रहे हैं। समारोह में करीब 10,000 लोग शामिल हुए हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में एक सार्वजनिक पार्क में विश्व योग दिवस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल सूरत में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। समारोह 312 प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। अपर्णा कुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
बिहार में पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया है। सशस्त्र सीमा बल की बिहार इकाई ने पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में योग कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुंगेर में भी बिहार स्कूल ऑफ योग ने विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया है। आकाशवाणी के पटना परिसर में भी विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्रीलंका में ऐतिहासिक गोल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने गोल में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पर समारोह आयोजित किया है। अमरीका में भारतीय दूतावास ने वाशिंगटन में योग सत्र का आयोजन किया है। बांग्लादेश में ढाका के मीरपुर इंडोर स्टेडियम में भारतीय उच्चायोग योग कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। उच्चायोग ने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बांग्लादेश के योग संघों को आमंत्रित किया है। संयुक्त अरब अमीरात में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। दुबई में योग के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर केन्द्रित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि योग किसी विशेष संप्रदाय या धर्म से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे सोच ये है कि पूरा विश्व एक परिवार है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री कोविंद ने कहा कि योग का अभ्यास लोगों और समुदायों को एकजुट करता है और इसमें एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से जोड़ने की भी क्षमता है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। योग का अभ्यास हर व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है और उन्हें स्वस्थ बनाता है। योग का अभ्यास एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से जोड़ता है और एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का सामर्थ्य रखता है।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज दो दिवसीय दौरे पर भारत आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी बातचीत के अलावा उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात का कार्यक्रम है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। भारत में नई सरकार के गठन के बाद यह पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा होगी। इस महीने की शुरूआत में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में भी वे शामिल थीं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। इस समिति की सिफारिशों से एनटीए की कार्यप्रणाली, इसकी संरचना, परीक्षा प्रक्रिया, पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में और सुधार होगा। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री प्रधान ने कहा कि कुछ अनियमितताओं का पता चला है और सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि सरकार नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं पर बिहार सरकार के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने यूजीसी नेट परीक्षा 2024 के संबंध में मामला दर्ज किया है। शिक्षा विभाग के सचिव से प्राप्त शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B और 420 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने बताया है कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मिले संकेत के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यूजीसी नेट 2024 की शुचिता से समझौता किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस महीने की 18 तारीख को देश के विभिन्न शहरों में दो पालियों में परीक्षा आयोजित की थी। सरकार ने कहा है कि देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सरकार ने गेहूं की कीमतों पर कड़ी नजर रखने और देश के उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप करने की सलाह दी है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा के लिए गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति की कल बैठक हुई। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि रबी खरीद मौसम 2024 में 18 जून तक 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पंजाब के किसानों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वे किसान हितैषी निर्णय लेने के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पंजाब अनेक फसलों की पैदावार के लिए देश भर में अपनी पहचान रखता है। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने का विशेष महत्व है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 14 विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर किसान गदगद हैं और विशेष रूप से प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं।
मैं मनप्रीत सिंह, नेगा पंजाब से एक छोटा सा किसान हूं। एमएसपी बढ़ाने से किसानों का जीवन तो खुशहाल होगा ही, साथ में ही इन सभी पर जो निर्भर करते हैं वो सफलतापूर्वक हो सकेंगे। किसानों की आय भी बढ़ेगी। मोदी जी ने जो किसान सम्मान निधि योजना दे रखी है उससे भी किसानों का जो आत्मविश्वास है, आत्मबल है, वो बढ़ रहा है। लगातार मोदी जी किसानों का जीवन बेहतर बनाने में लगे हुए हैं।
निश्चित रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने से राज्य के किसानों को अपने कृषि उत्पादों से अधिक आय होने का मार्ग प्रशस्त होगा। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
सरकार आज वाणिज्यिक कोयला खंडों की नीलामी के 10वें दौर की शुरुआत करेगी। इस दौर में 60 खंडों की नीलामी की जाएगी। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी हैदराबाद में नीलामी का शुभारंभ करेंगे। कोयला मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि ये कोयला खदान बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में है। इससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। भारतीय रेलवे ने कल जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज पर 8 कोच वाली मेमू रेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इससे रियासी से कश्मीर में बारामूला तक मार्ग पर रेल सेवा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। 18वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आज समापन हो रहा है। 7 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत इस महीने की 15 तारीख को चार्ली हैमिल्टन जेम्स द्वारा निर्देशित बिली एंड मॉली एंड ओटर लव स्टोरी के प्रीमियर के साथ हुई थी। एक रिपोर्ट।
18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 61 भाषाओं में 59 देशों की 314 फिल्में, 8 विश्व प्रीमियर, 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 18 एशिया प्रीमियर और 21 भारत प्रीमियर शामिल रहे। इसके अलावा मिफ में उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ मास्टर क्लास और पैनल चर्चाएं आयोजित की गई। इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों में 42 लाख रूपये के पुरस्कार दिए जायेंगे। फिल्म निर्माताओं को उनकी परियोजनाओं के लिए खरीददार, प्रायोजक और सहयोगी ढूंढने के लिए पहली बार DOC फिल्म बाजार का आयोजन भी किया गया था। FTII, SRFTI, IIMC जैसी प्रमुख संस्थानों के छात्र भी इस वर्ष मिफ का हिस्सा बने। इस वर्ष दिव्यांग लोगों के लिए विशेष फिल्मों की स्क्रीनिंग भी करवाई गई। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में भारत ने कल अफगानिस्तान को 47 रन से हरा दिया। भारत ने अफगानिस्तान को 182 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 134 रन पर आउट हो गई। सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुपर 8 में आज बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 141 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 4 रन बना लिए हैं। दूसरे मुकाबले में आज शाम इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। मौसम विभाग ने आज देश के मध्य पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में गरज के साथ तेज आंधी और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में आंधी, बिजली और तेज हवाओं के साथ तेज वर्षा की संभावना है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है आकर्षिता सिंह।
धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, भारत के हठ योग से दुनिया बन रही है निरोग। राजस्थान पत्रिका ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सर्वे प्रकाशित किया है जिसमें 74% लोगों का मानना है योग भगाए रोग। 55% से अधिक लोगों की दिनचर्या में शामिल है योग। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी की आतंकियों को सख्त चेतावनी। हरिभूमि की मुख्य पृष्ठभूमि पर है, अमन के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नवभारत टाइम्स ने शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, नेट में लाखों छात्रों पर असर नहीं होगा। कहा, नेट का क्वेश्चन लीक, CBI ने केस दर्ज किया। परीक्षा में धांधली शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है, सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग रोकने से इनकार, आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा रद्द होती है तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। अमर उजाला ने बिहार में गिरफ्तार परीक्षार्थी का दावा प्रकाशित किया है, एक दिन पहले मिल गया नीट का पेपर, जवाब रटाए गए। जनसत्ता ने नीट अभ्यर्थियों की चिंता और गुहार को प्रमुखता दी है, NTA पर भरोसा नहीं, दोबारा कराए परीक्षा का आयोजन। हिन्दुस्तान लिखता है, केजरीवाल को जमानत मिली, आज रिहाई संभव। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, बिहार में 50 से 65% किया गया आरक्षण, हाईकोर्ट से रद्द। वीर अर्जुन लिखता है, नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से झटका।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्वभर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से समारोह का नेतृत्व कर रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। UGC नेट जून 2024 परीक्षा के संबंध में CBI ने मामला दर्ज किया। और T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने सुपर 8 में बारबाडोस में अफगानिस्तान को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।